मिस्टर प्रभास दत्ता के घर में रोहन, शालू और प्रांजल बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। प्रांजल ने रोहन से कहा, जीजू आपको नहीं पता ये रात मेरे लिए कितनी लंबी थी। प्लीज जल्दी बताइए कि आपने कैसे उन सब खड़ूसों को मनाया, कौन सी रामबाण औषधि बनाकर उन्हें पिलाई। शालू ने मजाक करते हुए कहा, हाँ है तो सबके सब खड़ूसी, उन्हें मनाना भी मुश्किल है, रोहन ने पता नहीं कैसे किया होगा। रोहन ने बताते हुए कहा, मैंने उन्हें प्रियल के बारे में सब सच पता लगाकर बताया। वो सब बताने के बाद उनकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बताया प्रियल का मिस्टर दत्ता से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बची कुछ प्रॉब्लम का भी सल्यूशन हो गया। लेकिन जीजू उन सबको प्रियल से क्या प्रॉब्लम है, प्रांजल ने पूछा। ये बात मेरे अभी भी समझ में नहीं आई। रोहन इस बारे में जानता था मगर वो प्रांजल को नहीं बता सकता था। उसने कहा, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ, होगा उनका कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। बड़ी पावर के बीच में हमेशा कोई ना कोई टकरार बनी रहती है, इसी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। प्रांजल ने भी उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यही काफी था कि प्रियल की कुछ मुसीबतें अब कम हो चुकी थीं। इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी मीटिंग रूम में इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, जो कॉलेज के मामले में प्रिंसिपल थे, और डायरेक्टर बैठे थे। डायरेक्टर ASC से रिलेटेड मामला संभालते थे, जबकि प्रिंसिपल का काम इंस्टीट्यूट के कॉलेज वाले सेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह के मामले को संभालने का था। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मिस्टर पॉटर थे, जो कि निक के दोस्त रॉन के डैड थे। डायरेक्टर में मिस्टर डिसेना और तीन और सदस्य थे। मिस्टर डिसेना जीनी के डैड थे। एमा उन सबके सामने खड़ी थी, अंकित भी था। वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ आए थे। एमा ने कहा, देयर वाज सम कन्फ्यूजन सर इन प्रियल्स मैटर। प्रियल के मामले में कोई गलतफहमी हुई है, उसकी आइडेंटिटी रियल है और उसने कोई चीट नहीं किया है। अंकित उसके बोलते ही बोला, यस सर, आई चेक्ड हर ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल आर रियल, शी इज इनोसेंट, सो हम चाहते हैं उसे जो भी नोटिस मिला है वो वापस ले लिया जाए। मिस्टर पॉटर दोनों से बोले, इतनी छोटी सी बात हमसे क्यों कर रहे हो? इस मामले को लेकर हमने पूरा कंट्रोल निक को दे दिया है। वो इंस्टीट्यूट में कैप्टन के ओहदे पर है, कंप्लेंट भी उसने ही फाइल किए थे, तो तुम लोग हमसे इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? मिस्टर डिसेना ने उनसे कहा, और नहीं तो क्या, जो बात करनी है निक से करो, एक बार कंप्लेंट करने के बाद हम डिसीजन में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट अंकल, एमा ने बोलने की कोशिश की मगर मिस्टर डिसेना ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैंने कहा है ना, जो भी बात करनी है वो कैप्टन निक से करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर सब अपनी जगह से खड़े हुए और मीटिंग रूम से बाहर चले गए। अंकित उनके जाते ही बोला, छोड़ एमा, ये नहीं सुनेंगे, हम बेमतलब दीवार पर सर मारने वाला काम कर रहे हैं। एमा ने भी इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं तो भूल जाती हूँ, यहाँ हमसे ज्यादा निक की चलती है, उसका जो ऑरा है उससे कोई भी नहीं भिड़ सकता, वो कैप्टन ऐसे ही नहीं है। एमा और अंकित दोनों ने वापसी का रास्ता पकड़ा और वहां से चले गए। उन्होंने रात को अपनी तरफ से इस मामले में कुछ करने की कोशिश के बारे में सोचा था, जो बस यही थी, इसके अलावा वे लोग और कुछ नहीं कर सकते थे। अब बाकी सब निक के हाथ में था। वहीं निक सुबह की शुरुआत से ही अलग माहौल में दिख रहा था। उसने फ्रेश कपड़े पहन रखे थे। फ्रेश कपड़ों से मतलब लाइट और रेगुलर पहने जाने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग। उसने दुकान से काफी सारे सॉरी बोलने वाले कार्ड, चॉकलेट्स, बुके और किताबें खरीदी और फिर गाड़ी में बैठकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चला गया। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद उसने आसपास देखा, सब ट्रेनिंग में बिजी थे। उसने सबको ट्रेनिंग में बिजी देखा तो वो फौरन आरोही के कमरे में गया और वहां जाकर जो भी सामान वो लेकर आया था उसे छुपा दिया। उसने अपने सामान को इस तरह से रखा था कि वो प्रियल की नज़र में आ जाए या जो भी कमरे में आए उसकी नज़र में आ जाए, कोई और इसे अपने ऊपर ना ले। इसीलिए सब सामान रखने के बाद उसने उसके ऊपर एक और कार्ड रख दिया जिस पर लिखा था, दिस इज़ फॉर प्रियल। सब करने के बाद वो बाहर आया और खुद से ही बोला, मुझे नहीं पता ये करना सही है या नहीं, क्योंकि मैं इसे जानता तो हूँ मगर इतना भी नहीं जो मुझे पता हो इसे कैसे मनाया जा सकता है। एली जब भी नाराज होती थी इसी तरीके से मानती थी, होप ये भी इसी तरीके से मान जाए। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया। प्रियल और आरोही दोनों ट्रेनिंग फील्ड पर थे और ट्रेनिंग कर रही थी। प्रियल के हाथ में ट्रेनिंग करते वक्त काफी दर्द हो रहा था। उसने कुछ देर तक तो ट्रेनिंग करने की कोशिश की मगर जब दर्द ज्यादा हो गया तो ट्रेनिंग छोड़ी और आरोही के पास आकर कहा, यार बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता था थोड़ी सी सूजन इतना दर्द करेगी। थोड़ी सी? आरोही ने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, उसका हाथ काफी सूजा हुआ था, ये काफी ज्यादा है, तुम हॉस्पिटल जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ वरना कहीं ऐसा ना हो छोटी सी बीमारी बड़ी बन जाए, मैं सुधा को भेजती हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर आरोही ने सुधा को आवाज लगाई और फिर उसे प्रियल के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। दोपहर के बाद निक अपने कमरे से बाहर निकला और इधर उधर देखा, सब स्टूडेंट लंच कर रहे थे। उसे सब दिखे मगर प्रियल दिखाई नहीं दी। उसने अपने कमरे से ही आरोही के कमरे की तरफ देखा, आरोही के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। प्रियल उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो कुछ देर तक कमरे के सामने ही खड़ा रहा और प्रियल को ढूंढने की कोशिश की, मगर काफी देर की कोशिश में भी उसे प्रियल नहीं मिली, तो वो उसे आगे चलकर इधर उधर ढूंढने लगा। निक ने प्रियल को ढूंढते हुए अपने मन में कहा, अगर जीनी से पूछा तो सवालों की बौछार कर देगी, वो तो परेशान करेगी सो अलग, प्रियल के मामले में वो वैसे भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्स देती है। इसके बाद वो उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसने आरोही के कमरे में रखी थी। अब मुझे ये भी लगने लगा है मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, ये तरीका सबसे बेकार तरीका होता है, इससे बेस्ट ये होगा कि मैं खुद ही एक सॉरी वाला कार्ड उसे दे दूं। ये कहकर वो छुपकर आरोही के कमरे में गया और वहां सारा रखा सामान वापस उठा लिया। सामान वापस उठाने के बाद वो अपने कमरे में गया और उसे छुपाकर वहां रख दिया। सामान रखने के बाद उसने एक छोटा सा कार्ड अपने साथ ले लिया ताकि प्रियल के दिखते ही हो से कार्ड दे सके। इसके बाद वो बाहर आया और वापस प्रियल को ढूंढने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद निक को आरोही दिखी जो फोन पर किसी से बात करते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी। निक ने देखा तो उसी से ही पूछने का सोचा, मगर वो नॉर्मल नहीं पूछ सकता था। उसने अपने सीनियर वाले फायदे का फायदा उठाया और आरोही से कहा, आरोही व्हाट आर यू डूइंग हियर। आरोही ये सोचते ही डर गई और उसके हाथ में जो फोन था वो नीचे गिर गया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है प्रियल का गुस्सा मुझ पर निकलने वाला है, भाग ले बेटा आरोही वरना तेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। निक ने डराने वाली आवाज में कहा, ट्रेनिंग नहीं है क्या तुम्हारी, क्या कर रही हो यहाँ और तुम्हारी वो फ्रेंड प्रियल कहाँ है। आरोही डरते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगी, वो सर मैं तो ट्रेनिंग के लिए ही जा ही रही थी लेकिन प्रियल का हाथ दर्द कर रहा था तो उसे सुधा के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। फिर वो हड़बड़ाती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए मैं ट्रेनिंग के लिए ही जा रही थी। साफ पता चल रहा था वो घबरा रही थी। निक ने इसकी केयर नहीं की और हॉस्पिटल का नाम सुनते ही फौरन पूछा, कौन से हॉस्पिटल। वो सिटी हॉस्पिटल, उसने कहा।
निक ये सुनते ही फौरन अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा, ऐसे मानो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। आरोही उसके जाते ही बोली, अच्छा हुआ चला गया, ओ गॉड प्रियल, भगवान मेरी दोस्त की रक्षा करना इससे, अब ये तेरे पास ही आ रहा है, तेरा हाथ सोचकर इसका मन नहीं भरा जो अब ये तुम्हारी और भी हालत खराब करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे एक हाथ के बाद ये तुम्हारे दूसरे हाथ का दुश्मन बनेगा, ओ गॉड बचा लेना मेरी फ्रेंड को। निक सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पहुंचते ही प्रियल को इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक उसने प्रियल की तलाश की तो वो उसे कमरे में दिखी जहां वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रही थी। निक वहीं खड़े होकर उसे देखने लगा, वो दूर था और दूर से ही प्रियल को देख रहा था। डॉक्टर ने प्रियल का हाथ देखा और कहा, आई थिंक देर इज सम इंटरनल इंजरी, डू वन थिंग, गो टू दी एक्सरे रूम एंड ब्रिंग योर एक्सरे, देन आई कैन ट्रीट यू बेटर। हाथ देखने के बाद उसने प्रियल को एक्सरे करवाने के लिए कहा। ओके थैंक्स डॉक्टर। प्रियल ने अपनी पर्स उठाई और एक्सरे रूम की ओर चल पड़ी। निक ने उसे एक्सरे रूम की ओर जाते हुए देख लिया था। वो एक्सरे रूम की ओर गई तो निक भी उसके पीछे पीछे चला गया। रूम खाली था। प्रियल रूम में पहुंची तो निक भी कमरे में आ गया। प्रियल ने निक को देखा तो वो उसे देखते ही घबरा गई और पीछे हट गई। पीछे हटते ही उसने मन ही मन कहा, निक ये यहाँ क्यों, किस लिए। उसने मन ही मन अपने लिए सवालों की बौछार खड़ी कर दी। उस दिन तो हाथ टूटते टूटते बचा था, पर आज पता नहीं क्या होगा, कहीं ये मेरा मर्डर ही ना कर दे। सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कहीं इसने मुझे मारकर डेड बॉडी को यहीं गाड़ दिया तो। हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, वो अटकल पटकल की चीजें अपने मन में सोचने लगी। तभी उसे एक यूज किया हुआ इंजेक्शन दिखा, वो उसके पास ही एक टेबल पर रखा हुआ था। उसके दिखते ही वो उसकी तरफ दौड़ी और इंजेक्शन को उठाकर उसे निक की ओर कर दिया। देखो अगर तुम मुझे मारने के इरादे से यहाँ आए हो तो मैं अभी कह देती हूँ ये तुम्हारे लिए सही कदम नहीं होगा, मारना तो दूर की बात, अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की तो मैं ये इंजेक्शन, इससे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अटकल पटकल सोचने के बाद वो अटकल पटकल की चीजें भी करने लगी। निक कुछ देर तक मुस्कुराया और फिर कहा, तुम्हें लगता है तुम एक इंजेक्शन से अपना डिफेंस करोगी, वो भी एक काबिल और वेल ट्रेन्ड एजेंट के सामने। निक उसकी तरफ चलने लगा, तुम्हारी तो अभी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, डिफेंस कैसे किया जाता है तुम्हें तो इसका भी नहीं पता। प्रियल घबराहट के मारे और पीछे होने लगी। मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आना, वरना 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 जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। निक का उसकी ओर जाना जारी था। वो बोला, किसका जिम्मेदार, क्या तुम इस यूज किए हुए इंजेक्शन से मेरी जान लोगी। प्रियल ने अपना लहजा बदला और फौरन इंजेक्शन फेंककर हाथ जोड़ लिए और आधे रोने वाले अंदाज में बोली, मैं प्लीज मुझे जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप मुझे मारना चाहते हैं, मैंने कोई न्यूज़ किसी तक नहीं पहुंचाई, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं। अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो। प्रियल काफी घबरा गई थी, उसका हाथ जोड़ना निक को अजीब लगा। उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदला और तेजी से उसके पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। घुटनों के बल बैठने के बाद उसने कहा, जो करना है वो मुझे करना चाहिए। इतना कहकर निक ने अपना चेहरा नीचे किया और बोला, आई एम सॉरी प्रियल। प्रियल उसका ये रवैया देखकर पूरी तरह से चौंक गई, उसे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आई नो सॉरी बहुत छोटा वर्ड है,
निक बोला, मैंने जो किया है उसके सामने सॉरी बोलना काफी नहीं होगा, बट मेरे लिए ये भी काफी बड़ी बात है। मैंने आज तक ज्यादा लोगों को सॉरी नहीं बोला, और अगर किसी को बोला है तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और उससे एक सॉरी का छोटा सा कार्ड बाहर निकालकर उसकी ओर कर दिया। उसके साथ एक एनवेलप भी था। मैंने कुछ और भी करने की कोशिश की है, ये लो। उसने वो सब प्रियल को पकड़ा दिया। प्लीज इसे अभी मत खोलना, यहाँ से जाने के बाद जब तुम अपने कमरे में जाओ तभी इसे खोलना है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर मुझे फिर भी उम्मीद रहेगी तुम मुझे माफ कर दोगी। इतना कहकर निक खड़ा हो गया और जाने के लिए मुड़ गया। प्रियल को तो ये सब किसी बड़े सदमे की तरह लग रहा था कि निक उसके सामने घुटनों के बल बैठ रहा था। वो अभी तक इसी से ही बाहर नहीं आई थी। वहीं निक ने जो माफी मांगी और जो भी कहा उसने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था। निक जाने लगा तो उसने एकदम से कहा, जा कहाँ रहे हैं आप, मैंने अभी आपको माफ नहीं किया है, आप मेरे बिना माफ किए जा भी कैसे सकते हैं। प्रियल के दिमाग में जो आया उसने कह दिया। इसमें से एक भी बात उसने कहने के लिए नहीं सोची थी। जो भी रिएक्शन था वो सेल्फ मेड था। निक मुड़ा और बोला, तो क्या करना होगा, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे माफ कर दोगी। प्रियल के सेल्फ मेड रिस्पॉन्स ने कहा, बिना कान पकड़े सॉरी कौन मांगता है, पहले तो मुझे ये बताओ। निक मासूम से अंदाज में बोला, तो सॉरी मांगने के लिए कान पकड़ने पड़ेंगे। जी हाँ, प्रियल इतराई। निक ने खड़े खड़े दोनों कान पकड़े और कहा, सॉरी। प्रियल दोबारा इतराई, हद ही हो गई है, ऐसे कौन सॉरी बोलता है, अब क्या हुआ, सिर्फ अकेला सॉरी। प्रियल ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की। आई एम कौन बोलेगा जो सॉरी से पहले लगता है। निक मन ही मन बोला, ये जुनी से कम है क्या। फिर वो प्रियल से बोला, आई एम सॉरी। प्रियल ने थोड़ा ब्लश किया, उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और बोली, ओ प्रियल कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही। फिर वो अगले ही पल धीमी आवाज में बोली, मगर संभल कर प्रियल, क्या पता ये एक हाथ के बाद तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दे, तोड़ दे। निक उसे घूर कर देख रहा था। प्रियल ने हाथ नीचे किए तो निक बोला, मैं सब सुन रहा हूँ। प्रियल अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, आपको सुन गया। निक ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और तुम इतनी नाजुक हो क्या कि थोड़ा सा हाथ मरोड़ते ही हॉस्पिटल पहुंच गई। अगर यही हाल रहा तो एजेंट कैसे बनोगी। चलो अब अपना चेकअप करवाओ और फिर चलें यहाँ से। हाँ हाँ, प्रियल बोली और नखरे दिखाते हुए उसके पास से निकली। पास से जाते हुए बोली, ब्ला ब्ला, एजेंट कैसे बनोगी, जैसे एजेंट बनने के बाद सब आकर मेरा हाथ ही मरोड़ेंगे। उसके जाते ही निक ने सांसें छोड़ते हुए अपने सर के बालों को उड़ाया और बोला, उफ ये लड़की।